नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती फिर से आपका स्वागत करता हूं शिव पुराण की एक और कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है कामदेव। वैसे भारतीय फिलोसॉफी में जीवन के चार लक्ष्य या पुरुषार्थ बताए जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसका अर्थ होता है कि धर्म राइटियसनेस का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। अर्थ यानी कि प्रॉस्पेरिटी को अर्जित करना है, उस अर्थ से अपनी कामनाएं यानी कि डिजायर्स को पूरा करना है, और फिर उन्हीं कामनाओं पर विजय प्राप्त करके मोक्ष यानी कि लिबरेशन को प्राप्त करना है। दोस्तों, आज की दुनिया में इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा कि जिसमें आपको मोक्ष भी मिल जाए और दुनिया को छोड़ने की आवश्यकता भी न पड़े। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम बस अर्थ और काम यानी कि प्रॉस्पेरिटी और डिजायर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, धर्म और मोक्ष को नहीं। शिव पुराण की आज की कहानी कामदेव के बारे में है। कामदेव वही हैं जो आपके हमारे सबके मन में काम को उत्पन्न करते हैं। इसे आप केवल स्त्री के प्रति अट्रैक्शन के रूप में ना देखें। हर वो इच्छा या डिजायर जो किसी भी मटेरियल वस्तु के लिए होती है, वो ही काम है। आज की कहानी हमें यह सिखाएगी कि काम बुरी चीज नहीं, पर यदि वो धर्म पर आश्रित नहीं, यदि उसका बेस राइटियसनेस नहीं है, तो वो डिजायर आपको खत्म भी कर सकती है। पर यदि इच्छा धर्म के लिए है, तब क्या वो बुरी है? जी बिल्कुल नहीं। स्वयं शिव जी यही हमें सिखा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं शिव पुराण की इस कथा को। आप ये तो जानते ही हैं कि जब शिव जी का अपमान हुआ तो उनकी पत्नी सती ने अग्नि में कूद करके आत्मदाह कर लिया था। शिवजी इस बात को सहन नहीं कर पाए थे और उनके तांडव से पूरी सृष्टि खत्म होने लगी थी। जब सारे देवताओं ने उन्हें मिलकर समझाया तो शिवजी शांत हो गए और अपनी समाधि में लीन हो गए। उनके समाधि में जाते ही सृष्टि फिर से शांत हो गई। समय बीता। उसके बाद महाबली राक्षस तारकासुर ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अपनी तपस्या के बदले उसने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा। वो तो संभव नहीं था। फिर उसने यह वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल शिवजी के पुत्र से ही हो। ब्रह्मा जी को उसे यह वरदान देना पड़ा। इससे ताड़कासुर लगभग अमर हो गया था, क्योंकि सती जी आत्मदाह कर चुकी थीं और शिवजी अपनी समाधि में लीन थे, तो पुत्र कहां से आता? जब मृत्यु ही हो नहीं सकती तो तारकासुर का अत्याचार सभी सीमाओं को लांघने लगा। तारकासुर का अगला लक्ष्य था स्वर्ग लोक पर अधिकार। देवताओं को जब यह बात समझ में आई तो उन्हें बस इसका एक ही उपाय दिखा कि शिवजी को उनकी समाधि से जगाया जाए। बात केवल इतनी ही नहीं थी, बात यह भी थी कि देवताओं को शिवजी का पुत्र इसलिए चाहिए था ताकि वो तारकासुर को मार सके। तो शिवजी को समाधि से जगाने के अलावा उनमें एक पुत्र के लिए इच्छा भी पैदा करनी थी। उस समय काम के देवता कामदेव को यह काम सौंपा गया। कामदेव उस जगह पर पहुंचे जहां शिवजी समाधि में लीन थे। सबसे पहले वो सारी चेष्टाएं करने लगे जो कि स्वाभाविक थी, जैसे स्वर्ग की अप्सराओं का नृत्य इत्यादि। परंतु इन सब से शिव की समाधि कहां टूटने वाली थी? करना तो और कुछ पड़ेगा। तब कामदेव स्वयं को एक आम के पेड़ में छिपा लेते हैं और उस आम के पेड़ के पत्तों की आड़ में से शिवजी पर एक पुष्प बाण चलाते हैं। पुष्प बाण सीधा शिवजी के हृदय स्थल पर जाकर लगता है और कारगर सिद्ध होता है। शिवजी की समाधि टूट जाती है। लक्ष्य तो पूरा हो चुका था, पर अब उसका परिणाम भुगतने की बारी थी। अपनी समाधि टूटने के क्रोध में शिवजी कामदेव को देखते हैं और अपने त्रिनेत्र की अग्नि से उसे भस्म कर देते हैं। जहां शिवजी समाधि से बाहर आए, वहीं दूसरी ओर पार्वती जी की अटूट तपस्या चल रही थी। ये कठोर तपस्या शिवजी को ही पति के रूप में पाने के लिए की जा रही थी। शिवजी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। फिर दोनों का विवाह हुआ और दोनों के साथ आने से कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। इसी कार्तिकेय ने फिर दुष्ट तारकासुर का वध किया। दोस्तों, हमारी कहानी का लक्ष्य तारकासुर नहीं, वो कामदेव थे जिन्होंने पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए। क्रोध में शिवजी ने कामदेव को भस्म तो कर दिया, पर फिर बाद में जब उन्हें इसका कारण पता चला तो अपनी भूल का अनुभव हुआ। क्योंकि कामदेव भस्म हो चुके थे तो शिवजी ने उसे वरदान दिया कि वो अदृश्य रूप से सदा के लिए जिएंगे, यानी कि उन्हें इनविजिबल रहते हुए अमरता का वरदान दे दिया गया। यही दिन बसंत पंचमी या मदनोत्सव और होली के रूप में आज तक मनाया जाता है। इसी दिन कामदेव ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये बात हमें बताई थी कि इच्छा यदि धर्मानुसार हो, सबके भले के लिए हो, अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए न हो, तो वो इच्छा बुरी नहीं। कामदेव अमर हो गए। इन्हीं कामदेव के प्रभाव में आकर ही आपके मन में भी इच्छाओं का जन्म होता है। डिजायर्स तो आप में आएंगी ही, वो तो एकदम नेचुरल हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी उन डिजायर्स के प्रति रिएक्ट कैसे करते हैं। क्या आप उन इच्छाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, या उन पर नियंत्रण रखते हुए इस बात का ध्यान रखते हैं कि किस इच्छा पर आपने ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना है। सबसे बड़ी मोटिवेशन जो इस कहानी में हमें मिल रही है वो ये है कि कुछ भी बुरा नहीं है यदि वो राइट है। यहां पर राइट का अर्थ है जो धर्म के अनुसार सत्य है। धर्म क्या कहता है, इसी बात से हमारा पूरा वेद, पुराण और दूसरा साहित्य भरा पड़ा है। उसे जानना कोई बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों। आप जब कुछ भी काम करते हैं तो अपने किसी न किसी इच्छा की पूर्ति के लिए ही करते हैं। बस उस समय अपने मन में एक प्रश्न कर लें कि ये जो मैं कर रहा हूं, क्या ये सही है, और अगर वो सही है तो कर दें, नहीं तो रहने दीजिए। अपनी इच्छाओं को मारिए मत और ना ही उनके दास भी बनिए। तो दोस्तों, इसी बात के साथ आज की कहानी को मैं यहीं पर विराम देता हूं। अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए, फिर मिलने का वादा करता हूं। नमस्कार।